रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बल धामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। राम जी और सीता जी कौशल्या माता को प्रणाम करके अपने महल में आ गए। अभी तक लक्ष्मण जी को पता नहीं था, लक्ष्मण जी तो पहले के समान आनंदित थे कि ओहो आज हमारे राम जी को राजगद्दी मिलेगी, राजगद्दी मिलेगी, बहुत खुश थे। लेकिन जब उनको ये पता चला कि राम जी तो बन जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दौड़े दौड़े रोते बिलखते आए और राम जी के चरणों में गिर गए। शरीर पुलकित हो रहा है और एक बच्चे के समान राम जी को पकड़ करके लक्ष्मण जी रो रहे हैं, बोलना चाहते हैं कुछ बोला नहीं जाता है, जैसे कोई पानी के अंदर मछली ऊपर नीचे तड़फड़ाती है थोड़े पानी में दीन, ऐसे मछली के समान लक्ष्मण जी तड़फड़ा रहे हैं। उनके मन में इस बात की चिंता हो रही है कि इस विधाता के द्वारा क्या होने वाला है, हमारे तो सारे पुण्य सारे आनंद अब खत्म हो गए, मुझे राम जी अपने साथ चलने के लिए कहेंगे कि रखने के लिए कहेंगे, क्या कहेंगे पता नहीं है। ऐसे लक्ष्मण जी आकुल व्याकुल हुए हुए अपने पास हाथ जोड़कर रोते बिलखते भाई को देखकर राम जी महाराज शरीर परिवार महल इन सब को तिलांजलि देकर जो खड़ा है लक्ष्मण, उसको नीति में निपुण राम जी हैं जो आनंद के सागर है, शील और स्नेह से भरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अरे लक्ष्मण तुम तो प्रेम के अंदर बड़े कायर हो गए, घबरा गए, तुम हृदय में कुछ सोचो और इसका परिणाम बहुत उत्साहजनक होगा, मुझे वन में जाने दो, तुम्हें मैं ये शिक्षा देता हूं कि तुमको यहीं रहना चाहिए, क्योंकि माता पिता गुरुजन स्वामी इन लोगों की शिक्षा को अपने सिर पर जो धारण करते हैं उनको ही जीवन में जन्म लेने का लाभ मिलता है, ये तो व्यर्थ ही जन्म गया, तुमसे बड़ा हूं ना, तो मैं तुमको ये आदेश दे सकता हूं कि तुमको यहीं रहना चाहिए और यहां तुमको माँ बाप गुरु सब मिलेंगे, इनकी सेवा करो। और देखो लक्ष्मण, माता पिता की सेवा से बढ़कर पुत्र का और कोई दूसरा काम नहीं होता। और बात सुनो, भरत और शत्रुघ्न दोनों ही यहां नहीं है, पिताजी बूढ़े हैं, मेरे वियोग के दुख में रो रहे हैं और मैं समझ रहा हूं कि तुम भी मेरे साथ चलने की इच्छा रख रहे हो, तो ये बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रही है कि बूढ़े पिताजी और माताजी को सबको सेवा करने के इस अवसर पर छोड़ करके तुम्हें मैं कैसे साथ ले जाऊं। देखो मैं चला जाऊंगा, तुम साथ में चले जाओगे, भरत और शत्रुघ्न है नहीं, अब बताओ अयोध्या के अंदर कौन है कि जिसके ऊपर अयोध्या में प्राण टिकाने की जगह मिले, सब पर बड़ी भारी आपत्ति आई हुई है। गुरुजनों पर, पिता माता पर, प्रजा परिवार पर बड़ा भारी दुख आ गया। तुम यहां रहो और अपने शीतल स्वभाव से सबको तुम आनंदित करो, नहीं तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। सुनो लक्ष्मण, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। दशरथ जी के राज्य में अयोध्या को दुखी बनाकर दशरथ जी को नरक में भेजना चाहिए क्या अपने लोगों को? तुम विचार करो। तुम यहां रहोगे, प्रजा को भी एक बल मिलेगा, प्रजा सुखी रहेगी और अपने पिता नरक से बच जाएंगे, ऐसी नीति समझ करके मैं तुमको यहां पर रोक रहा हूं। लक्ष्मण जी बड़े व्याकुल हो गए। भगवान के ठंडे ठंडे वचनों से उनकी कैसी हालत हुई? जैसे कमल के ऊपर बर्फ गिरता है, पोष का महीना हो और ओले गिरते हो, कमल की खेती होती, सब कमल की खेती नष्ट हो जाती है। अरे बर्फ ठंडा, अरे ठंडा तो है लेकिन कमल उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे राम जी ने कहा तो बहुत स्नेह से है, ठंडे ठंडे वचन कहे, पर हमारे लक्ष्मण जी राम जी का वियोग सह नहीं कर सकते। वो बर्फ की इतनी गहरी ठंडक होती है, कमल वन नष्ट हो जाता है। उतरुन आवत प्रेम बस, प्रेम के कारण से लक्ष्मण जी को उत्तर नहीं आ रहा है। चरणों में प्रणाम किए कि महाराज आप स्वामी हो, मैं आपका दास हूं, यदि आप ही मुझे इस प्रकार से छिटका दोगे, त्याग दोगे तो मेरा क्या बस है? आपके आज्ञा में, आपकी शिक्षा में मुझे कोई दोष नजर नहीं आता है। मेरी अपनी कायरता ही मुझे झकझोर कर रही है, महाराज क्या बताऊं? शास्त्रों की सब बातें मानने के वे लोग अधिकारी हैं जो धर्म में प्रवीण होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वे लोग शास्त्र की बात मान सकते हैं महाराज, मैं तो ऐसा हूं नहीं। मैं तो आपके प्रेम के अंदर ही पला हूं। अब मंदराचल पर्वत हो, सुमेरु पर्वत हो, उसको कभी कोई हंस उठा सकता है क्या? ऐसे ही आपके जो ये दिव्य वचन है, ये सुमेरु पर्वत के समान, मंदराचल पर्वत के समान बहुत भारी वचन है महाराज। मैं एक छोटा सा हंस कैसे इसको धारण कर सकता हूं? आपने कहा कि गुरु है, माता है, पिता है, इनकी सेवा करो और जो है इनकी बात मानो। तो महाराज मैंने तो आज तक किसी को गुरु बनाया ही नहीं। मैं तो माँ और बाप को भी नहीं जानता हूं, कौन है माता पिता, मैं तो एक आपको जानता हूं। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए महाराज। संसार के जितने स्नेह के संबंध हैं, पिता हो, माता हो, भाई हो, कोई हो, मेरा तो महाराज सबसे संबंध हट करके आप में संबंध लगा है। आप दीन बंधु हैं, आप सबके अंतःकरण में रहने वाले हैं, इसलिए मैं तो एक आप ही को कह सकता हूं। धर्म नीति उपदेश उसको दीजिए महाराज जिसको मुक्ति पसंद है। मुझे तो मुक्ति पसंद नहीं है, मुझे ऐश्वर्य पसंद नहीं है, तो तुमको क्या पसंद है? कि मुझे तो आप पसंद हो। कुछ पसंद नहीं है। मैं तो मन से वाणी से वचन से आपके चरणों को छोड़ करके कहीं और जगह रहना ही नहीं चाहता हूं, आपके चरणों में पड़ा रहना चाहता हूं। ऐसा ही कोई उपाय करो महाराज, दूसरा कोई उपाय चलने वाला नहीं। राम जी महाराज ने ये वचन सुने और कहा कि जाओ मां से आज्ञा ले आओ, ध्यान देना या ध्यान देना। सीता जी को तो बहुत उपदेश दिया, बहुत बताया जंगल में ऐसे कष्ट होंगे। सीता जी ने एक ही बात कही, एक बात, राम जी ढीले हो गए। क्या? कि आप जाएंगे ना तो मेरे प्राण है अभी साथ में निकल जाएंगे। तो प्राण से भी ज्यादा प्रिय भगवान में प्रेम हो, प्राणों से भी ज्यादा भगवान में प्रेम हो, ये भगवान में ऊंची भक्ति होती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं गुरु पितु मातु बंधु इनको किसी को नहीं जानता हूं, और जहां तक जगत के जो संबंध है शास्त्रों में भी बताए हैं, जो कुछ भी है महाराज वो सब एक आप हो। बताओ भगवान कैसे कह देंगे ऐसे का मैं त्याग करता हूं। यदि ऐसे कहा त्याग कर देते तो भगवान को आज भक्त वत्सल कोई नहीं कहते। भगवान को भक्त वत्सल नहीं कहते। करुणा सिंधु, देखो शब्द दिए तुलसीदास जी में, करुणा सिंधु सुबांधु के सुनि मृदु बचन बिनीत समुझाए उरलाय प्रभु जान सनेह सभीत। करुणा के सागर भगवान, भगवान को करुणा क्यों आई? लक्ष्मण जी की ऐसी शरणागति देख करके, मैं किसी को जानता नहीं हूं, गुरु पितु मातु, गुरु पितु मातु ने जानऊ का हूं। लक्ष्मण जी के उपदेश में इतना बल, ये उपदेश लक्ष्मण जी के निवेदन में इतना बल भरा हुआ है कि गुरु पितु मातु जान का हूं, मैं इनके अलावा किसी को भी नहीं जानता हूं, और सब संबंध एक आपके अंदर आकर निहित हो गए। क्या भगवान, देखो प्रेम के बदले में प्रेम करने वाले भगवान ही होते हैं। हम जिनसे भी प्रेम करते हैं वो हमारे प्रेम के लात मारते हैं। हम इस वस्तु से प्रेम करें कि साहब ये पेंसिल बहुत अच्छी है, लेकिन पेंसिल हमसे प्रेम नहीं करती। इससे हम प्रेम करें कि देखो लिखने में काम आती है, हमसे प्रेम नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम स्वार्थ तक आकर रुक जाता है। लेकिन भगवान कैसे हैं? लक्ष्मण जी ने प्रेम किया तो भगवान ने उसका प्रतिफल कितना अच्छा दिया कि जाओ मां से विदा मांगिया हो, आज्ञा मांगना नहीं कहा। माने मां को सूचित कर दो कि मां मैं जा रहा हूं, और आगो वेगी चलो वन भाई, जल्दी आओ और वन में चले, आज्ञा तो आपने दे ही दी, अब क्या है। लोग कहते सुमित्रा माता से आज्ञा मांगने गए, आज्ञा तो राम जी ने दे दी, आगो वेगी और चलो, जल्दी आओ और चलो। भगवान तो लक्ष्मण जी की इस भक्ति के ऊपर मुग्ध हो गए। लक्ष्मण जी की जब शक्ति बाण लगता है, मेघनाथ की शक्ति लगती है, उस समय राम जी महाराज इतना प्यार करते हैं लक्ष्मण को गोद में लेकर के, लक्ष्मण मुझे यदि ये मालूम होता कि तुम मेरे से अलग हो जाओगे तो पिता के वो वचन नहीं मानता, वो वचन, तो क्या आप वन में नहीं आते कि वन में आ जाता है? तो कौन से वचन नहीं मानते? पिता वचन मानते होते ओ वो वचन नहीं मानते। क्या कि जिस समय दोनों जने जा रहे थे तो राम जी ने कहा, राम जी से कहा कि देख राम, ये लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ जा रहा है, छोटा है। दशरथ जी को संतोष हुआ कि लक्ष्मण जा रहा है तो ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण जी के स्वभाव से दशरथ जी महाराज परिचित थे कि लक्ष्मण साफ राम जी के हित के लिए लड़ने झगड़ने वाला है, और ये राम जी के पास में एक तो रहना ही चाहिए ना। तो कहा इस लक्ष्मण का ध्यान रखना, इसको साथ में ले जाना, इसको तुम साथ में रखना। ये जो तुम्हारे विषय में जो मुझे इतनी बातें बताई ना, तो पिता वचन मनतव नहीं ओहु, वो पिताजी के वो वचन नहीं मानता। मैं कह महाराज लक्ष्मण जी को ले जाना ही नहीं चाहता हूं। राम जी महाराज जो पिता के वचनों पर ही सारे अपने रामचरित्र को टिकाए हुए है, वो कहते हैं पिता के वो वचन नहीं मानता। लोग कहते हैं वो वचन माने, ये वनवास का वचन नहीं मानता। नहीं, वनवास का वचन तो भगवान को निभाना ही था। यदि भगवान वनवास का वचन नहीं मानते तो भाई भगवान की पितृ भक्ति कोई उदाहरण में आती नहीं। आप वेगी चलो बन भाई। बहुत प्रसन्न हो गए लक्ष्मण जी महाराज, विचार किया कि चलो बहुत बड़ा लाभ हो गया, बहुत बड़ी हानि हमारी छूट गई। मां सुमित्रा के पास आए और चरणों में प्रणाम किया, ऊपर से प्रणाम किया और मन राम और सीता के पास में है। लक्ष्मण जी के आंसू की धारा बह रही थी। सुमित्रा ने आश्चर्य किया, अरे लक्ष्मण तू रोता है, तू आज तक कभी रोया ही नहीं, सिसके मार के रोता है। एक बात है, बच्चा चाहे कितना ही बड़ा हो, माँ के पास जाता है ना तो उसका रोना थोड़ा बढ़ ही जाता है, और ही ढंग का होता है, और के सामने वो आंसू निकलने नहीं देता कुछ भी। और माँ ही मिल जाती है तो माँ के सामने वो फूट फूट के रो पड़ता है, बहुत फूट फूट करके लक्ष्मण जी रोने लगे। माँ ने पूछा, लक्ष्मण बात तो बताओ। तब लक्ष्मण जी ने सब बात बताई कि राज्याभिषेक की बात सुनी थी ना माँ? हाँ बेटा सुनी थी। उसमें विघ्न पड़ गया, राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ गया, राज्याभिषेक नहीं होगा। नहीं होगा माँ, क्या हो गया? माता कैकेयी ने ऐसे ऐसे दो वरदान जो उसके पास सुरक्षित थे पिताजी से मांग लिए और राम जी को वनवास मिल गया। सुन रहे हो, मृगी देख दब जनु चहु हो रहा, जैसे जंगल में चारों तरफ आग लग जाए और एक हिरणी वो खड़ी रहे, वो ताकते हुए देखे। अब क्या होगा, ऐसी हिरणी की दशा होती है ना, ऐसी सुमित्रा की दशा होगी, अब क्या होगा? अब वो दौड़ सकती नहीं, क्योंकि आग लगी हुई है, बचने की उम्मीद दिखती नहीं है। वो जैसे असमंजस में रहती है, ऐसी सुमित्रा माता असमंजस में रही। अब जो है सुमित्रा माता की दशा देख करके लक्ष्मण जी ने सोचा, ओहो यही ऐसा स्नेह है कि जिससे मेरा कोई काम रुक सकता है। यदि माँ के आंखों में पानी आ गया और माँ ने यदि मुझे छाती से लगा के कह दिया, बेटा मैं तुम्हें तो नहीं जाने दूंगी, ऐसा कह दिया, तब फिर क्या कहूं? अब मैं विदा मांगते भी संकोच करता हूं, क्या करूं मैं? लक्ष्मण जी हाथ जोड़ रहे हैं, लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। अब मैं किस विधि से कहूं कि मैं जाना चाहता हूं? अब कहूं तो भी ठीक नहीं, नहीं कहूं तो वो भी ठीक नहीं। सुमित्रा माता ने राम जी के स्वभाव का स्मरण किया। अब देखो सुमित्रा माता की कितनी बड़ी दूरदर्शिता है। वो समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाव, नृपसा ने लखी धुने उसे रू पापिनी दीन कुदाऊ। राम और सीता याद आ रहे, अरे लक्ष्मण वन में जा रहे हैं, राम और सीता माथे पर हाथ रख दिया, सिर धुने हुए। राजा दशरथ का कितना राम में प्रेम, कितना सीता में प्रेम, और इस पापिनी ने कैसे मौके पर, कैसे समय पर दाव खेला है। अब देखो इनको वन में जाना पड़ेगा। थोड़ी देर धैर्य धारण करके और फिर कहा, सुनो लक्ष्मण, केकी ने अपना काम कर लिया, दशरथ जी ने अपना वरदान दे दिया, राम और सीता वो जाने के लिए तैयार हो गए, मेरी एक सीख मानो, तुम मेरे पास क्यों आए। बेटा तुम्हारी मां तो सीता है, तुम्हारे पिता राम है, और जहां राम रहेंगे वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। जैसे जहां दिन है वहां सूर्य का प्रकाश रहता है, ऐसे ये जो वनवास हुआ है ये राम के लिए हुआ है, सीता के लिए हुआ है, पर तुम्हारे लिए नहीं हुआ है, क्योंकि जहां राम और सीता है वहां अयोध्या है। तो तुम तो अयोध्या में ही हो, चाहे कहीं भी रहे हो। राम अपने माता पिता से बिछड़े हुए हैं, सीता जी भी बिछड़ी हुई है, पर तुम अपने माँ बाप से नहीं बिछड़े हो, क्योंकि तुम्हारी माँ सीता है, तुम्हारे पिता राम है। राम और सीता रवाना हो गए क्या लक्ष्मण, फिर तुम मेरे पास क्यों आए। यदि राम और सीता वन में जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा क्या काम है, क्या काम है यहां बताओ। तुमको उसी समय रवाना हो जाना चाहिए, मेरे पास क्यों आए। तुम तो राम की ऐसी सेवा करना हो जैसे गुरु की सेवा की जाती है, जैसे पिता की सेवा की जाती है, जैसे माँ की सेवा की जाती है, जैसे भाई की सेवा की जाती है, जैसे देव पुरुष की सेवा की जाती है, जैसे स्वामी की सेवा की जाती है, ऐसे राम की सेवा करना। राम केवल एक तुम्हारे भाइयों ऐसा नहीं है, राम तो वास्तव में सभी लोगों का जीवन है, सभी के वे प्राण हैं, और सभी के वे निस्वार्थ भाव से मित्रता निभाने वाले हैं। जहां जिन पुरुषों में आपको जहां जो कुछ दिखता है उसको राम ही समझना चाहिए, राम की विशेषता है। है तो किसी और में, पर वो और नहीं है उसमें, वो राम की विशेषता है। जाओ अपने जीवन का लाभ ले बेटा, ये तुम्हारे लिए ही जीवन का लाभ हो रहा है। भूरी भाग भाजन भयऊ, अरे ये मौका है, मौका इसका लाभ ले लो। मैं तुम्हारे पर बड़ी प्रसन्न हूं, बलिहारी माने प्रसन्न होना, मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम बिना किसी छल कपट के राम जी के चरणों की सेवा करते रहना, तुम्हारे लिए वो सबसे ऊंचा स्थान है। देखो स्त्री वो श्रेष्ठ होती है जिसका बेटा भगवान का भक्त होता है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। नतरु नतरु बांझ भली बादी बियानी। यदि वो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति नहीं सिखाई तो उसे तो अच्छा बांझ रहती, वो बांझ रहना अच्छा है। और भली बाद बियानी, और यदि उसके पुत्र है राम का भक्त नहीं है तो वो व्यर्थ में ब्या गई। ब्याना होता है पशुओं का, गाय ब्या गई, भैंस ब्याई, बकरी ब्याई, ये ब्याई होती है ना, जो मतलब पशुओं के लिए ही शब्द लागू होता है। राम जी से प्रेम न करे ऐसे पुत्र को जो जन्म देता है, जन्म देती है, वो तो पशु जन्म देते हैं वैसे जन्म देने के समान है। सुनो लक्ष्मण सुनो, तुम्हारे भाग राम बन जाए। राम जी तो तुम्हारे भाग्य से ही जा रहे हैं, तुम्हारे भाग माने तुम हो शेषनाग, शेषनाग के ऊपर है पृथ्वी, जब अभी आपने सुना ही था, उस पृथ्वी के ऊपर पाप बहुत बढ़ गया, राम जी पाप का नाश करेंगे तो पृथ्वी का भार हल्का होगा, हल्का होने से शेषनाग तुम्हारे फण के ऊपर जोर कम आएगा, इसलिए तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन में जा रहे हैं, दूसरा और कोई कारण नहीं है कि रावण को मारना है ना। रावण को मारना क्या बड़ी बात है, रावण भी तो भारी है। रावण को क्यों मारना है कि रावण खुद भार है, भार। वो भार किस पर है कि तुम्हारे पर है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि है वो, अरे ऋषि मुनि है वो भजन साधन करते हैं, उससे पृथ्वी का जो है मैल नष्ट होता है, वो भी तुमको ही लाभ मिलेगा। बताओ राम का क्या स्वार्थ है वन में जाने में, बताओ। राम का कोई स्वार्थ नहीं। राम का अवतार चरित्र सब लोग गाएंगे ना माँ, तो सब लोग गाएंगे तो सब लोग सुखी होंगे। पृथ्वी तो पापों से भरती भारी होती है, पृथ्वी पुण्यात्माओं से तो हल्की रहती है, इसलिए अंत में तुमको ही तो लाभ मिलने वाला है, ये पृथ्वी को ही तो लाभ मिलने वाला है। दूसर हेतु तात कछु नाही, कोई भी तुम कारण ले आओ तुम्हारे लाभ को छोड़ करके राम जी के वनवास का कोई प्रसंग नहीं है, कोई बात नहीं है। सारे पुण्यों का फल यही है कि सीताराम के चरणों में प्रेम हो जाए। कभी भी तुमको अयोध्या की घटनाएं वहां याद नहीं आनी चाहिए कि ऐसा देखो केकई ने कर दिया और ऐसा पिताजी ने साफ दिया, कुछ नहीं करना। कोई राग, कोई रोष, कोई ईर्ष्या अपने मन में आने ही मत देना। मन क्रम वचन से सीताराम जी की सेवा करना। सेवा का क्या रूप होता है बताते हैं, देखो बेटा उनको कोई कष्ट न हो ऐसा ध्यान रखना, ऐसा उपाय करने का नाम सेवा है। एक गुरुजी थे, एक पैर तो एक चेला दबा रहा था, एक पैर दबा रहा था। तो भाई उस समय एक मक्खी थी, वो मक्खी कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे, तो चेले ने अपने गोडे से मक्खी हटाई, सेवा कर रहा हूं साहब। मक्खी दोबारा बैठी तो पास में डंडा की मरी मक्खी के, तो वो मक्खी तो उड़ गई। गुरुजी के लगा कि क्या कर रहा है भाई, कि मैं सेवा कर रहा हूं महाराज, आपकी सेवा कर रहा हूं। जय न राम मन लही कलेशु सुतसोई करे हो भाई। हाँ तो कहावत है ना, कुत्ता हूं तो भगा, माने थारी छास ने काठी राख, कुत्ता हूं तो भगा। तो ऐसी सेवा क्या काम की जिस सेवा उल्टी सेवा हमारे महंगी पड़ जाए। महाराज जी बता रहे थे एक बार खूब से लोग आए स्टेशन पर, सामान्य तो वो एक कोई अच्छे अच्छे कामड़ों का एक वो था बेटा, उसे वो लेके भग गया। वो तो सेवा कर रहे हैं महाराज, सेवा करते करते वो तो दे गया। तो क्या ऐसी सेवा महंगी पड़ती है भाई, जिस सेवा से कष्ट होता है वो सेवा थोड़ी होती है। जय न राम बन लही कलेशु, जिससे राम जी महाराज जो है क्लेश प्राप्त न करें उसका नाम सेवा है। उपदेश मेरा यही है बेटा कि राम और सीता के मन में तुम्हारी बात को लेकर कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। और एक जब तुम राम और सीता की सेवा में हो तो अपने और कोई चीज स्मृति में ही नहीं आनी चाहिए। अयोध्या है कि माँ है कि बाप है कि प्रिय है परिवार है, कुछ भी याद नहीं आनी चाहिए। ऐसे बार बार आशीर्वाद दिया और कहा कि देखो राम जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम नित नित बना रहे, अविरल बना रहे, ये मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मातु चरण सिरुनाय चले तुरत संकेत हृदय, माता के चरणों में प्रणाम किया और फिर तुरत संकेत हृदय, बड़ी शंका के साथ में लक्ष्मण जी रवाना हुए। शंका किस बात की थी भाई, प्रसन्न होना चाहिए ये शंकित हृदय क्यों हुआ? लक्ष्मण जी को अब क्या शंका थी? लक्ष्मण जी सोचे कि माँ है, अभी तो बोल दी, फिर वापिस स्नेह उमड़ी आएगा कहीं, ऐसी शंका थी। कहीं कहीं स्नेह आ ही जाएगा, कहीं बुला लेगी, कहीं मेरी याद आ जाएगी, तो एकदम जाकर के नहीं 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 राम राम जी को जाके लक्ष्मण को तैयार रहने दे, इसलिए उनके मन में शंका थी। चले तुरत संकित हृदय बागुर विषम तोराय मनहु भाग मृगु भाग बस। लक्ष्मण जी इतने जल्दी वहां से गए जैसे कोई मृग है माने हिरण है, वो कोई कठोर फंदा आ जाए, फंदा उसको तोड़ करके भग जाता है, ऐसे सर्वदय से जैसे वो जाता है ऐसे बहुत जल्दी जल्दी गए, बहुत जल्दी जल्दी लक्ष्मण जी वहां से रवाना हो गए और जहां सीताराम जी थे वहां पर पहुंच गए। कहा क्या हुआ कि महाराज मां ने तो जैसी आज्ञा दी ऐसी आज्ञा दूसरा कौन दे सकता है। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, सब लोगों के अंदर हवा तो फैली गई कि ये वन में जाए जा, अरे वन क्या दे रहे, वो तैयारी कर रहे हैं। तो वे सब लोग कैसे दुखी हुए, जैसे मधुमक्खी के छत्ते को मधुमक्खियों को छत्ते से अलग कर देते हैं, शायद से अलग कर देते हैं, मक्खियां वहां भिन भिनाती भी हैं और जा भी नहीं हूं, कैसी मधुमक्खियों की हालत होती, ऐसी हालत हो गई। बिना पंख के जैसे पक्षी है वो तड़पता रहता है, ऐसे लोगों में तड़पन हो गई। राजा के दरबार के वहां पर बहुत बड़ी भारी भीड़ लग गई, लोग जो है वो बड़े दुखी हो गए। इधर सुमंत जी ने जाकर राजा को बैठाया कि महाराज राम जी आए हैं, लक्ष्मण जी भी आए हैं, सीता जी भी आई है। राम लक्ष्मण सीता तीनों को देख करके राजा तो एकदम और ही जाने सोचने क्या हो रहा है। बारह बार सने बस राव ले उरला, ये तो जाने की तैयारी, तीनों जने जा रहे हैं। राजा कुछ बोल नहीं सके। राम जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज आज्ञा दीजिए, बड़े आनंद का समय है, इस समय में आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? देखो पुत्र के प्रेम में कभी ऐसा भी प्रमाद नहीं होना चाहिए जिसमें लोगों के अंदर हंसी हो जाए, अपवाद हो जाए, इतना आप प्रेम के अंदर प्रमाद कर रहे हैं। राजा दशरथ ने कहा ये राम देखो ज्यादा तो मैं तुमको नहीं कहता हूं, मेरे पास बहुत से ऋषि मुनि आते रहते हैं, उन्होंने कहा है कि ये राम है ये चर अचर समस्त प्राणियों का नायक है, स्वामी है। मैंने ये भी सुना है कि ईश्वर है वो कर्मों का फल देता है, पर ये आज उल्टा फल कैसे हो रहा है? और करे अपराध को और पाव फल भो, अपराध तो कोई और करता है और फल किसी और को मिले, आज पहली बार ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि आज तक तो जो अपराध करने वाला है उसी को ही फल मिलता है, अपराध तो मैंने किया था, अपराध केके ने किया था, हम दोनों तो यहां महल में आराम से बैठे हुए हैं और तुम जो है वनवास का कष्ट भोगने जा रहे हो, ये क्या बात है? कुछ भगवान की गति समझ में नहीं आती है। माने ये जितनी बातें थी ना, ये राजा राम जी को रखने का नया नया उपाय रच रहे थे, परंतु राम जी महाराज का जो रुख है वो रुख वास्तव में अब रहने का तो था नहीं, ये बात दशरथ जी महाराज जानते थे। बहुत उपाय कर लिए, बहुत सी बातें कह दी, देखो भगवान को भगवान भी कह दिए और यह भी कह दिया कि पाप पुण्य का फल आप पर लागू नहीं होता है, लेकिन ये आज ऐसे कैसे लागू हो गया? भगवान कोई पाप से या पुण्य से थोड़े ही आते हैं संसार में, हम लोग तो पाप पुण्य से आते हैं, भगवान तो आते नहीं। तो शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईस देव फल हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम अनीति ऐसी कह सब कोई। पर यहाँ तुम्हारे यहाँ तो उल्टी बात हो रही है। ऐसे ऐसे बहाने भी लेकर के दशरथ जी महाराज रखने का खूब प्रयत्न करते हैं पर रुकते नहीं है। कुछ उपाय नहीं दिखा तब सीता को बार बार देख करके दशरथ जी कहने लगे, बेटा तूने वन में जाने की कैसे सोच ली? तुम्हें पता ही नहीं कि वन में कितने कितने दुस्सह कष्ट होते हैं। तुम तो यहां रहो बेटा, अपने घर पर सासू की सेवा करो और ससुर की सेवा करो, ये सब तुम्हारे लिए सास ससुर पितु सिख सुख समझाए। यहां रहोगे तो इनकी सेवा भी हो जाएगी, सुखपूर्वक तुम्हारा समय निकल जाएगा। पर कितना ही सीता जी को कहा पर उनको महल का सुख है वो सुख नहीं दिखा, और वनवास का दुख है वो दुख नहीं दिखा। वहां गुरुजन भी बैठे थे और भी स्त्रियां बैठी थी, सबने सीता जी को समझाया पर सीता जी के एक ही बात समझ में नहीं आई, एक की भी बात समझ में नहीं आई। तो अरुंधति जी बोली, वशिष्ठ जी की पत्नी, कि बेटा तुमको तो जो है वनवास मिला ही नहीं है, तुम क्यों जा रही हो? तुम तो यहां ससुर जी की सेवा करो ना, सासू जी की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो। अरे तुम राम की सेवा के बदले में सेवा करो। इस प्रकार से खूब प्रेम की वाणी से सीता जी को वे समझाती हैं, पर सीता जी को तो भाई शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई अकुलानी, जैसे जितना जितना चंद्रमा साफ प्रकट होता है उतना उतना चकई को रात्रि के अंदर बड़ी घबराहट होती, चंद्रमा से घबराहट होती है। चकई चकवा चकवी होते हैं ना, इनको रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में दिखता नहीं है, और चंद्रमा के प्रकाश से उनको गर्मी बहुत लगती है चकवा को चकवी को। चकवा चकवी रात्रि में इतने ज्यादा चंद्रमा से पीड़ित होते, एक पिंजरे में दोनों को रख दो वो यूं रहेंगी। संपत्ति माने बताया है कि भरत जी महाराज है ना, वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में कैसे थे, इतना बड़ा वैभव कि संपत्ति चक, संपत्ति है वो चकवी है और भरत जी है वो चकोर है चकवा है, और आश्रम है वो पिंजरा है। तो जैसे रात्रि के अंदर वे रहते ऐसे चकवा चकवी यूं रहते, ऐसे भरत जी महाराज के मन में इतना बड़ा ऐश्वर्य इतनी बड़ी सिद्धियां, कोई उनके ऊपर असर नहीं पड़ा भरत जी की। जिसके मन में वैराग्य होता है उनकी इन चीजों का असर नहीं होता। तो फिर कोई कहेगा कि भरद्वाज जी ने इतना वैभव दिखाया ही क्यों? इसलिए वैभव दिखाया कि भरद्वाज जी महाराज भरत जी के प्रेम को आप हम लोगों के सामने बताना चाहते थे कि ऐसे भरत जी प्रेम करते हैं ना, ऐसा प्रेम होना चाहिए। ऐसी ऐसी सिद्धियां बताई जो देवताओं के भी आश्चर्य हो जाए, ऐसे जो मणियां और सिद्धियां महल ने सब बताए। वाल्मीकि रामायण में तो कहा कि वहां खीर की नदी सी बहा दी, गायों के लिए पशुओं के लिए घास के जाने कितने कैसे कैसे बड़े बड़े पहाड़ जितने ढिग लगा दिए, और वो वस्तुएं इतनी दिव्य इतनी सुगंधित इतनी प्रिय, सब लोग बड़े आनंद से भोजन कर रहे थे। भरत जी महाराज ने फल फूल लिए, उनको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि क्या है, मणियों जटित सिंहासन बनाया हुआ एक भरत इसके ऊपर बैठोगे नहीं। ऐसे बता रहे हैं कि शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई अकुलान, सीता जी को सब लोग मीठे वचन सुनाते हैं पर वो चकवी के समान व्याकुल हो रहे हैं। सीता जी उनको जवाब कुछ नहीं देती है। इतने में ही केकी उठी, तमक करके आई और ऋषि मुनियों का मुनिपट भूषण भाजन आनी। ऋषि मुनियों का जो पट भूषण हो, भूषण का अर्थ यहाँ गहना नहीं है, मुनियों का जो वस्त्र का जो आभूषण, जो वस्त्र पहनते वो वस्त्र ला करके दिए। लो लो देखो बेटा, तुम राजा को बहुत प्यारे लगते हो राम, इसलिए तुम्हारा शील और तुम्हारा जो स्नेह है, उस स्नेह के अंदर ये पिताजी पागल हो गए हैं, वो छोड़ नहीं सकते हैं। इनको इस बात का पता ही नहीं है कि इतना स्नेह करने से इनके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, परलोक बिगड़ जाएगा। वो सोचते बिगड़ जाओ, लेकिन तुमको ये वन में जाने की बात कभी नहीं कहेंगे। अभी तक कहा क्या तुमको, तुम दो बार मिल लिए राम, दोनों बार में ये नहीं कहा कि तुम वन में चले जाओ। तुमको तो रोकने की बात कह रहे हैं, जाने की बात नहीं कह रहे हैं। अब तुम अपने पिताजी का कल्याण करने के लिए, पिताजी का हित का विचार करने के लिए तुमको जाना चाहिए ना राम। असि विचारी सोई करऊ जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। राम जी महाराज के, वाह माता तुमने बहुत अच्छी बात कही, पिताजी का उद्धार हो ऐसी आपने हमको शिक्षा दी, बहुत अच्छा किया। दशरथ जी सुनते हैं ये बात, पास में बोल रही एक निधड़क होके कह गई। दशरथ जी को और सबको सोचना चाहिए, इतनी निधड़क राम के सामने, हमारे सामने बोलती है, जरूर केकई के पीछे कोई बहुत बड़ी दैवी शक्ति है। पर कौन समझे, राम जी के प्रेम के आगे दैवी शक्ति को कौन समझेंगे, नहीं समझ सकते। सब प्रेम, सबका अपनी अपनी जगह जो कुछ भाव था वो सब ठीक था। राम तुरंत मुनि वेश बनाए, राम जी महाराज तुरंत ऋषि मुनियों का वेश बनाए और अपने माता पिता को प्रणाम करके वे वहां से रवाना होने, रवाना होकर के सबसे पहले अपने वशिष्ठ जी महाराज के घर आए। द्वार पर ही खड़े थे वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज ने राम को खूब आशीर्वाद दिया, राम जी महाराज ने सबको दान वगैरह दिया और गुरु जी से बार बार कहा कि देखिए आप हमारे पिताजी पर पूर्ण कृपा रखिएगा। लोगों को भी यही बात भगवान कहते रहे कि देखो हमारे पिताजी को किसी प्रकार कष्ट न हो, ऐसा आप लोग काम करते रहना। यही विधि राम सबई समझावा, इस प्रकार से सबको समझाया। इधर दशरथ जी महाराज मूर्छित पड़े थे। सुमन जी ने कहा महाराज राम जी तो यहाँ महल के आगे दरवाजे के उधर वहां तक पहुंच गए। अरे सुमंत मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं, क्या बात है। अब इन प्राणों को कौन सा सुख मिलने वाला है कि जिसके लिए अभी तक यहाँ पड़े हुए हैं, इतनी बड़ी व्यथा मेरे लग गई, मेरे प्राण नहीं निकल रहे। ऐसा करो तुम रथ लेकर के जाओ 14 वर्ष के लिए। का ना 14 में कितना अक्षर होता है, 1 और 4 होता है, 1 और 4। तो एक दिन तो, एक तो आज का दिन हो गया और रथ चढ़ाई दिखराई बनू फिरे उ गए दिन चार, 4 दिन तुम और घुमा लाओ, 14 हो गया बस, 1 और 4 ये तो 14 है, 1 दिन घुमा लाओ, 1 दिन तो आज का हो गया, 4 दिन और घुमा लाओ। सुटी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमार रथ चढ़ाए देखराए बनू फिर गए दिन चार। बड़ी विचित्र बात बोलते हैं, रथ के ऊपर तुम चारों जने चढ़ करके फिर के आ जाओ, 4 जने तो 3 तो यहीं रहे, तुम 4 जने, 4 का अर्थ या दोनों तरफ लगता है। चलो जो भी हो, वो कायल घायल होकर के बिचारे प्रेम के अंदर पागल होकर के बोल रहे, ऐसे प्रेम में पागल होना बहुत ऊंची बात है। और कहते हैं देखो सुमन जी, ये राम तो बड़ा सत्य प्रतिज्ञ है, दृढ़ व्रत है, शायद ये तो नहीं आएगा, लेकिन तुम ऐसा करना, ऐसे घनघोर जंगल में ले जाना, शस्त्र वस्त्र पूरे रखना और सीता जी को घनघोर जंगल दिखाना। अयोध्या के पास बहुत घनघोर जंगल है, वहां घोर जंगलों में सीता जरा सी भी कभी डर जाए तो उस समय में कहना कि देखो आपके ससुर जी ने ये बात कही है, आप ऐसा करना। उनका कि पुत्री बहुत कष्ट है, तुम आ जाओ, मैं तो सदा जंगलों में खूब शिकार खेला हुआ हूँ, मुझे तो खुद को पता है कितने कितने पशु, कितने कितने बलवान पशु आते हैं, मेरे पास तो बाण थे, शस्त्र थे, इसलिए मैंने तो पशुओं का मुकाबला कर लिया, तुम लोग बच्चे हो क्या होगा, इस प्रकार से उनको खूब समझाना और अंत में कह देना कि बेटा तुम नहीं अब आओगे तो अब हमारे प्राण चले जाएंगे। ऐसा कहते कहते दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए। इधर राम जी महाराज के पास में वो रथ ले गए और सुमन जी ने कहा कि महाराज रथ में बिराजिए, तो अयोध्या को प्रणाम करके वे रथ में बैठे। अब वो रथ रवाना हुआ, अयोध्या लोगों को ऐसी डरावनी नगरी लगती है कि यहाँ के जितने लोग हैं वो मानो यमराज जी के दूत हैं, भूत हैं भूत। घर मशान, घर तो मशान के समान लगता है, और परिजन जनु भूता, सेठ जी कहा करते थे इस चौपाई पर, घर में कैसे रहो ऐसे रहो, घर मशान परिजन जनु भूता, सुतहित मीत मनौ जम दूता। अपना घर मशान के समान लगना चाहिए, अपने भाई बंधु जितने भी ये लोग हैं, ये परिजन वगैरह परिवार के लोग, ये भूत के समान दिखने चाहिए। अपने बेटा है, अपनी स्त्री है, ये सब यमराज जी के दूत के समान दिखना चाहिए। ये वैराग्य वैराग्य, भगवान के बिना आपको ये संसार कैसा लग रहा है, ऐसा लगना चाहिए जैसे राम जी के बिना अयोध्या वासियों को अयोध्या लग रही थी। सब लोग ऐसे थे जैसे कोई चित्र में लिखे गए हों। केकई तो एक भीलनी के समान है कि जो अयोध्या रूपी जंगल में आग लगा दी और राजी हो रही है। सब लोग विरह की आग में जल रहे हैं। सबने विचार किया कि चलो अपने अयोध्या छोड़ो और राम जी के साथ चलो, जहां राम तह सब ही समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू, हमारा इस अयोध्या में अब कोई काम नहीं है, चलो वहीं चलते हैं। सब लोग साथ साथ रवाना हो गए। राम जी के चरणों को हृदय में धारण किए हुए, विषय भोगों की किसी के भी मन में कोई नहीं, हमारा मकान दकान क्या होगा, सुर दुर्लभ सुख सदन भी आई बताओ, देवताओं के लिए ऐसे रहने की जगह नहीं, ऐसा आराम का घर। लेकिन उसी समय राम जी के त्यागने से उन्होंने भी त्याग दिया, और कोई छोटे छोटे बच्चे रह गए तो रह गए हो, या खाट पर पड़े हुए कोई बूढ़े आदमी रह गए तो रह गए हो, बाकी कोई अयोध्या में नहीं रहा, अयोध्या खाली हो गई। राम जी के साथ साथ रवाना हो गए और पहले दिन तमसा नदी के किनारे आकर राम जी महाराज ने विश्राम किया, तो सब लोगों ने भी वहीं जाकर विश्राम किया। अब विश्राम तो किया, राम जी महाराज ने कहा कि अरे लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, क्या करें। तब राम जी महाराज अपने लोगों को कुछ बोले नहीं, अब इनको कहें कि तुम वापिस जाओ तो ये हट करेंगे। आदमी जब जिद पर चढ़ जाए ना, ज्यादा कर ज्यादा अब जाओ जाओ तो नहीं 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 नहीं, करते करते ही तो साथ चलेंगे, उस समय कुछ नहीं बोले। लेकिन वास्तव में इतने लोगों का काफिला हमारे साथ चलेगा तो भाई वनवास में बड़ी तकलीफ हो जाएगी, हमारी लीला है वो तो हम तीन तक सीमित रहने वाली है, चौथा कोई आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लीला तो हमने वहां क्षीर सागर में बैठ करके बनाई थी कि ऐसे ऐसे लीला करनी है। लक्ष्मी जी सीता है, शेषनाग है ये जो है लक्ष्मण है, हम विष्णु है, तो हमने तीनों ने मिलकर के सोचा था। तो राम जी महाराज ने कहा क्या करें, इधर लोग आए थे ना, वो आए थे तो आकर के बस फिर वे वहीं पर लोग शोक श्रम बस गए सोई, राम जी हमको मिले हुए हैं, बड़ा आनंद उनको मिला हुआ, थोड़ा रात हुई सब लोग आराम से खर्राटा मारते हुए सो रहे हैं। राम जी महाराज उस रात्रि के अंदर लोगों से कैसे हम लोग जो है जा सके ऐसा विचार करने के लिए बैठे हुए हैं और सब लोग आराम से सोए हुए हैं। जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम
जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम
सियावर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाले अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय जय जय